तो साधन भक्ति की परिभाषा ये श्लोक है। नीचे के दो लाइन जो लाल में है उनको अब देखिए मत, वो बाद में आएगा जब हम आगे चल के इसकी चर्चा करेंगे। तो अगर हो सके तो हालांकि प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में इस श्लोक का संस्कृत में उल्लेख नहीं करते हैं, हालांकि अनुवाद दिया है, फिर भी इस श्लोक को कंठस्थ करना अच्छा है क्योंकि हमारे लिए ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है। पहले दो श्लोक हम कंठस्थ कर चुके हैं, कौन से श्लोक हैं? अन्याभिलाषिता शून्यम वाला श्लोक और दूसरा सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम वाला श्लोक, अब ये तीसरा है। कृति साध्या भवेत साध्य भावास साधनाभिधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। कृति साध्या भवेत साध्य भावासा साधनाभिधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। बोलिएगा। कृति साध्या भवेत साध्य भावासा साधनाभिधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। कृति साध्या भवेत साध्य भावासा साधनाभिधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। माता जी कोई बोलेंगे? कृति साध्या भवेत साध्य नित्य होना चाहिए, नित्या नहीं, नित्य नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि हृदि हृदय हृदि साध्यता। कृति साध्या भवेत् साध्य भावासा साधनाभिधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। तो इस श्लोक में हम सुनते हैं कि साधन भक्ति क्या है। साधन भक्ति के दो विशेषताएं हैं, दो लक्षण हैं। पहला कृति साध्या। कृति साध्या मतलब कृति, वो हमारे इंद्रियों के द्वारा वो किए जाते हैं। तो साधन भक्ति इंद्रियों के किए हुए कार्य हैं। सबसे पहला लक्षण ये है, इंद्रियों का प्रयोग होना आवश्यक है। कृति साध्या भवेत, और ऐसा करने से क्या होगा, परिणाम क्या है, लक्षण क्या होना चाहिए, इसका साध्य क्या है। साध्य भावा मतलब भाव भक्ति। तो साधन भक्ति वो है, वो भक्ति है जो अपने, जो सेवा है भगवान के प्रति, जो कि इंद्रियों के द्वारा की जाती है और जिसको करने से उद्देश्य या परिणाम भाव भक्ति का होता है। तो साधन भक्ति का उद्देश्य है भाव भक्ति, यह हमने देख चुके। पहली श्रेणी है साधन भक्ति, तो साधन भक्ति का उद्देश्य ही है दूसरे श्रेणी तक पहुंच जाना। अब कृति साध्या, कोई कहेंगे ये तो केवल ऐसे कहा गया है कि इंद्रियों के द्वारा किए गए कार्य, तो कैसे भी कार्य हो सकते हैं, भौतिक कार्य भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं। फिर बाद में क्या कहा गया है, साध्य भावा, कि ऐसे कार्य करने से भाव भक्ति उत्पन्न होनी चाहिए। तो भौतिक कार्य करने से तो भाव भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब है कि ये कार्य आध्यात्मिक हैं, जैसे कि हम सुन चुके हैं अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, ऐसे कार्य होने चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हैं, जो इस भावना से किए जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो। तो ऐसे कार्य जो कि इंद्रियों के द्वारा किए जाते हैं और जिनका करने से भाव भक्ति को प्राप्त व्यक्ति होता है, ऐसे भक्ति को साधना भक्ति कहते हैं, साधना भिधा, तो ऐसे भक्ति को साधन भक्ति कहते हैं, ये परिभाषा हुई। और आगे क्या बताया हुआ है, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। ये ऐसा नहीं है कि ये प्रेम हृदय में नहीं है, ये है, अप्रकट रूप में है। नित्य सिद्धस्य भावस्य, वैसे ही तो है लेकिन इसको प्रकट कराना है, प्रकट करने से फिर आगे चल के प्रेम प्रेम में परिवर्तित होता है। प्राकट्यम हृदि साध्यता, हृदय के भीतर ये प्रेम है। और कौन सा श्लोक आप बतला सकते हैं इसका एक प्रमाण, प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे चैतन्य चरितामृत का। हाँ जोर से बोलिए, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय। तो ये जो प्रेम है कृष्ण प्रेम, ये तो हर जीव के हृदय में है परंतु अप्रकट है, अभी ढका हुआ है, क्योंकि माया से, अभी माया के हम चंगुल में फंसे हुए हैं, हमारी आध्यात्मिक दृष्टि माया के द्वारा ढकी हुई है, इसलिए हम कृष्ण प्रेम को प्रकट नहीं करा पा रहे हैं, हम भूल चुके हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। परंतु श्रवण आदि, श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन आदि जो नवधा भक्ति है, ये सब करके शुद्ध चित्ते करय उदय, फिर से ये जो कृष्ण प्रेम हृदय में अप्रकट रूप में है वो पुनः उदित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। तो जब हम ये साधन भक्ति करते हैं, साधन मतलब एक प्रकार का अभ्यास है, प्रैक्टिस, अंग्रेजी में इसे प्रभुपाद जी डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस कहते हैं, अभ्यास करके जो किया जाता है वो साधन भक्ति है। तो वो उसी चीज को हम अभ्यास करके परिपूर्ण बना सकते हैं जब वो चीज बीज रूप में कम से कम हमारे अंदर हो। आगे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, कौन सा उदाहरण देते हैं बताइए, शिशु के, क्या है शिशु का उदाहरण,
चलने की जो स्वाभाविक गुण है लेकिन वो चलने में सक्षम नहीं है, पर अभ्यास के द्वारा वो चल सकता है। भक्ति जो है हमारे जीवन में सुप्त अवस्था में है, तो भक्तों के संग से नवधा भक्ति के द्वारा इसे
तो जैसे एक शिशु के अंदर चलने की क्षमता है, सुप्त अवस्था में है, लेकिन जैसे जैसे शिशु अभ्यास करता है, करते 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 धीरे से वो जो अंदर ही उसके चलने की वो शक्ति है वो पुनः प्रकट हो जाता है अभ्यास से। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं कि साधना भक्ति करके जब भाव प्रकट हो जाता है, इसका मतलब है कि पहले से ही हृदय में था। अर्थात प्रकट कैसे हो सकता था? प्रभुपाद जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रवचन है, वो रिकॉर्डिंग किया था उन्होंने पहले दिनों में, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट एन आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन द सोल, कि कृष्ण भावना जो है, कृष्ण भावनामृत, ये आत्मा के ऊपर कोई कृत्रिम रूप से जबरदस्ती थमाए हुए कोई वस्तु नहीं है। ये तो जीव का स्वरूप है, जीव का स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है जीव का। इसलिए जब हम साधन भक्ति करते हैं, साधन भक्ति के विभिन्न अंगों का पालन हम करते हैं, तो क्या होता है, वही सुप्त अवस्था में जो भक्ति है वो पुनः जागृत हो जाती है, पुनः प्रकट हो जाती है। और आगे प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं कि ये जो एक भगवान के प्रति भक्ति की भावना है, वो किसी न किसी रूप में हर एक इंसान में पाया जाता है, बल्कि जो आदिवासी लोग भी हैं उनके अंदर भी एक न एक रूप में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, क्या कहते हैं प्रभुपाद यहां पर?
हाँ हाँ,
जब प्रकृति में बड़े अद्भुत वस्तु देखते हैं तो समझते हैं कि इसके पीछे भी कोई एक अद्भुत शक्ति होगी, तो मानते हैं, वो जानते हैं कि ऐसे कोई शक्ति है, भले स्पष्ट रूप से उनको ज्ञान न हो इसके बारे में, परंतु फिर भी एक स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि कुछ तो है। तो ये भावना जो है ये हर प्राणी के हृदय में है। ऐसे इतिहास में ये अच्छे उदाहरण हैं भी, जैसे रूस देश में साम्यवाद फैलाया गया था करीब करीब 100 साल पहले, 90 साल पहले, और ये साम्यवाद दर्शन जो है ये नास्तिक दर्शन है। तो उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि लोगों की जो भगवत भावना है, धार्मिक भावना है, उसको नष्ट किया जाए, और बहुत ही उन्होंने प्रचार किया इसके बारे में, परंतु फिर भी जो चीज स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के हृदय में है उसको नष्ट कैसे किया जा सकता है। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, परंतु फिर 70 साल बाद में जब साम्यवाद वहां नष्ट हो गया और फिर सारे मस्जिद मंदिर चर्च जो भी हैं वो सब ऊपर आए, फिर से वहां भक्ति का विस्फोट जैसे हो गया। इसलिए हम देखते हैं कि जब हरे कृष्ण आंदोलन वहां पहुंच गया रशिया, पहले साम्यवाद के समय तो नीचे छुप छुप के हो रहा था, फिर जब वो सरकार गिरी, साम्यवाद सरकार, तो एक विस्फोट ही हो गया और हजारों की संख्या में रूसी लोग कृष्ण भक्त बनने लगे। हालांकि उनके लिए ये तो बहुत ही एक विदेशी धर्म था, इसके बारे में शायद उनमें से ज्यादातर लोगों ने सुना भी नहीं होगा। क्यों है ये? क्योंकि कृत्रिम रूप से भगवत भावना को दबाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जीव का स्वभाव है। जैसे कि जीव का स्वभाव है दूसरों की सेवा करना, कुछ भी कीजिए आप इसको दबा नहीं सकते, आप एक न एक रूप में ये प्रकट हो ही जाएगा। तो उसी प्रकार से जब जीव श्री कृष्ण का अंश है और स्वरूप है कि वो श्री कृष्ण का दास है, तो ये दासत्व की भावना जो कि भगवान के प्रति है वो तो प्रकट होकर ही रहेगी, किसी भी हालत में उसको दबाया नहीं जा सकता है। और इसलिए अगर किसी व्यक्ति को अपने स्वरूप में पुनः स्थित होना है और शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे ऐसे क्रियाएं और ऐसे अंगों का पालन करना चाहिए भक्ति के, जिनका करने से ये पुनः उदित हो जाएगा। इसी बात को यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और ऐसे अभ्यास को साधन भक्ति कहते हैं। तो अब बताइए, साधन भक्ति के दो लक्षण कौन से हैं? सबसे पहले नहीं, श्लोकों के शब्दों से कहिए, कौन से शब्द?
इंद्रियों
कृति साध्या, कृति साध्या सबसे पहले ये बात है। ये चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, ये भक्ति रसामृत सिंधु का है, लेकिन चैतन्य चरितामृत में भी इसका उल्लेख आता है, कृति साध्या। तो पहला लक्षण है क्या है, मतलब इंद्रियों द्वारा जो सेवा होती है वो है कृति साध्य। तो साधन भक्ति इंद्रियों के द्वारा किए जाते हैं। अच्छा, दूसरा लक्षण केवल इतना नहीं है, आगे चल के क्या होना चाहिए,
इसके फलस्वरूप साधना
भवेत साध्य भावा, इसका क्या भवेत मतलब हो जाना चाहिए, इसका परिणाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भाव भक्ति, मतलब साधना, साधन भक्ति का उद्देश्य क्या है,
भाव
भक्ति। तो भाव भक्ति में पहुंचकर फिर आगे व्यक्ति प्रगति करता है और प्रेमा भक्ति को प्राप्त करता है। तो साधन भक्ति से पहले भाव भक्ति में जाते हैं, फिर प्रेमा भक्ति। अच्छा, हम कल चर्चा कर रहे थे, यहां तो हमने तीन श्रेणियां बताई हैं भक्ति की, साधन, भाव और प्रेम। परंतु कल हमने दो ही प्रकार के भक्तियों की बात की थी, कौन से, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। तो साध्य मतलब क्या है, जिसको हमें प्राप्त करना है, हमारा गंतव्य, हमारा उद्देश्य है ना। तो जो सिद्ध अवस्था में होता है उसको साध्य भक्ति कहते हैं, और जो अभ्यास के स्तर में किया जाता है उसे साधन भक्ति कहते हैं। तो ये साधन है साध्य की प्राप्ति के लिए। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि ये तीन विभाजन क्यों हो गए, ये बीच में भाव भक्ति कैसे आ गया। भाव भक्ति का ये दूसरा जो बीच वाला स्तर है, इसको लाने की क्या आवश्यकता थी, बताएंगे कोई। हाँ,
भाव भक्ति और प्रेम भक्ति असल में साध्य भक्ति की दो शिखाएं हैं। तो इसलिए डिवाइड किया गया क्योंकि साधन भक्ति से तो हम साध्य भक्ति पाएंगे, और साध्य भक्ति में भी दो स्तर है, एक दो श्रेणियां है।
क्यों है, क्यों है, केवल एक ही श्रेणी साध्य भक्ति क्यों नहीं रखा, क्योंकि भाव भक्ति में हालांकि भगवान श्री कृष्ण के प्रति रति होती है, बहुत तीव्र आसक्ति होती है, और भक्त उस स्तर पर भगवान का साक्षात दर्शन करने के लिए भी योग्य हो जाता है, फिर भी ऐसे भक्त के हृदय के भीतर सारे अभद्र चीजें पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाते हैं अभी तक, भाव भक्ति के स्तर में भी थोड़े बहुत अपराध से उत्पन्न होने वाले अभद्र चीजें रह जाते हैं, क्योंकि जो अपराध होते हैं वो लंबे समय तक रहते हैं और उनको नष्ट करना कठिन होता है, मुश्किल होता है। इसलिए भाव भक्ति के स्तर में हालांकि व्यक्ति को आसक्ति बहुत होती है भगवान से, भगवान का दर्शन करने योग्य हो जाता है, फिर भी क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह से अपराध शून्य नहीं है, पूरी तरह से कलमश शून्य नहीं है, इसलिए ये प्रेमा भक्ति में नहीं रखा गया है, हालांकि ये साध्य भक्ति है। फिर भी प्रेमा भक्ति से ये अंतर ये है कि प्रेमा भक्ति के स्तर में सारे अपराध वगैरह क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं पूर्णतया। ठीक है, ये अंतर सब लोग समझ गए। तो अब फिर यह सवाल उठता है कि अगर भाव भक्ति प्रेमा भक्ति के साथ नहीं रखा जा सकता, तो फिर साधन भक्ति के साथ क्यों नहीं रखा जा सकता है, बताइए। प्रेमा भक्ति और भाव भक्ति में अंतर यह है कि प्रेमा भक्ति में बिल्कुल लेश मात्र भी कोई अपराध या कोई अभद्र चीज नहीं होती। भाव भक्ति में हालांकि भक्त बहुत ऊंचा पहुंचा हुआ होता है, फिर भी लेश मात्र कुछ रह जाता है। इसके लिए उदाहरण श्रीमद् भागवत में कोई बताइए, भाव भक्ति के स्तर से भी किसका कोई पतन हुआ क्या, महाराज भरत, भरत महाराज, भरत महाराज का पतन कैसे हुआ? हिरण के प्रति आसक्ति हो गई। तो देखिए इतनी सूक्ष्म चीज थी, परंतु एक हिरण के प्रति आसक्त होने के कारण भाव भक्ति के स्तर पर पहुंचने के बावजूद उनका पतन हो गया। परंतु क्योंकि भाव भक्ति भी कोई साधारण स्तर नहीं है, ये तो बहुत ऊंची अवस्था है, इसलिए नेहाभिक्रमणाशस्तो प्रत्यवायन विद्यते, इस श्लोक के अनुसार उनको अगले जीवन में भी भक्ति करने के लिए अनुकूल परिस्थिति प्राप्त हो गई। हालांकि उनको एक हिरण का शरीर मिला, क्योंकि वो हिरण के बारे में सोच रहे थे मृत्यु के क्षण में, फिर भी हिरण के शरीर में भी वो भगवान को भूले नहीं, जाति स्मर हुए। जाति स्मर मतलब जिनको अपना पूर्व जन्म स्मरण आता है, तो अपने पूर्व जन्म को स्मरण करते हुए उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब मैं माया में नहीं पड़ूंगा और ये सारे संसारी हिरणों के साथ मैं खेलूंगा नहीं, उठूंगा बैठूंगा नहीं। तो सारे हिरण समाज से उन्होंने सन्यास ले लिया, हिरणों में से सन्यासी, और केवल हिमालय में साधुओं के आश्रम में जाकर निवास करते थे। और आगे चल के फिर जब ये शरीर खत्म हो गया तो तीसरा जन्म कौन सा हुआ? जड़ भरत। और इस जन्म में उन्होंने अपना जीवन सफल बनाया प्रेमा भक्ति को प्राप्त करके। तो भाव भक्ति हालांकि इतनी ऊंची अवस्था है, फिर भी थोड़े लेश मात्र कुछ न कुछ जो अपराध या पाप, पाप के क्षीण, पाप के थोड़े बहुत रंच मात्र रह जाते हैं। इसलिए प्रेमा भक्ति से अलग ये विभाजन किया हुआ है। परंतु साधन भक्ति के साथ फिर क्यों नहीं इसको लगाया जाता है, बताइए?
साधन भक्ति में भक्त जो है उसकी इच्छा नहीं रहती फिर भी वो साधन करता है।
हाँ, ऐसा नहीं है, वो वैधि भक्ति है, साधन भक्ति नहीं। रागानुग साधन भक्ति में तो स्वाभाविक रूप से करता है भक्त, वैधि भक्ति में कभी कभी अपने इच्छा न होते हुए उसे करना पड़ता है। परंतु रागानुग साधना भक्ति में तो जो यहाँ है ना रागानुग साधना भक्ति, उसमें तो अपनी इच्छा से करता है। हाँ, अभी परिभाषा देखिए, भवेत साध्य भावा, इसका मतलब है भाव भक्ति को साधन भक्ति के साथ इसलिए नहीं जोड़ा गया है क्योंकि साधन भक्ति का उद्देश्य ही भाव भक्ति है। तो दोनों को साथ में कैसे लगा सकते हैं? जब एक करने से दूसरे की प्राप्ति होगी तो दोनों को एक जैसे नहीं लगा सकते, तो अलग श्रेणी करनी पड़ेगी, इसलिए तीन श्रेणी हो गए। ये समझ में आ गई बात आप सबको? डिफरेंस है तो इसलिए तो कहा गया कि साधन भक्ति करने से भाव भक्ति की प्राप्ति होगी। भाव में, भाव भक्ति में भाव प्रकट होते हैं, अष्ट सात्विक विकार, जो कि साधन भक्ति में नहीं होते हैं। और भाव भक्ति के भी लक्षण है जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो साधन भक्ति करने से भाव भक्ति की प्राप्ति होती है। तो साधन भक्ति के लिए जो भाव भक्ति है वो साध्य है, उद्देश्य है, गंतव्य है, इसलिए साधन और साध्य को मिलाया नहीं जाता है।
तो प्रेम भक्ति के लिए भाव भक्ति साधन है।
हाँ,
तो फिर उनको अलग क्यों नहीं किया?
अलग किया हुआ है ना।
आपने कहा कि साधन और साध्य दो प्रकार की हुई।
हाँ,
तो उसमें
वैसे साधन और साध्य दो प्रकार के हैं, परंतु साध्य में भी क्योंकि भाव और प्रेम में ये अंतर होता है, इसलिए इन दोनों को भी बाद में अलग किया गया है और उनको भाव भक्ति और प्रेम भक्ति कहा गया है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी आगे यहां बताते हैं कि जब जीव भगवान को भूलकर माया के प्रभाव में रहता है तो ये उसके लिए एक असाधारण अवस्था है, एक प्रकार का पागलपन है। और जिस प्रकार से एक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है, और फिर वो उस डॉक्टर के आदेश का पालन करके अपने मानसिक रोग से दूर हो सकता है, मुक्त हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से साधन भक्ति करने से व्यक्ति अपने माया की बीमारी से दूर हो सकता है। ये माया का रोग बहुत बड़ा रोग है, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां माया के रोग के लिए कोई दवाई दे। है तो उनको हॉस्पिटल नहीं कहते, उनको हरे कृष्ण मंदिर कहते हैं। वहां जाएंगे तो आपको इस भव रोग का निवारण करने की दवाइयां मिल जाएंगी। इसलिए साधन भक्ति के उदाहरण दिए हुए हैं। बताइए कौन से उदाहरण हैं प्रभुपाद जी, कौन से उदाहरण देते हैं? 21वें पन्ने में देखिए। हाँ और ऐसा करने से क्या होगा? ये पागलपन क्या है? ऐसा क्यों बताया प्रभुपाद जी? इतने कठोर शब्दों का प्रयोग क्यों किया है? हम लोग सब पागल हैं क्या? तो प्रभुपाद क्यों हम लोगों को सब पागल बोल रहे हैं? जो अपने आप को जानता नहीं है उसे हम पागल ही कहते हैं ना। समझ लीजिए कि अगर हमारे यहाँ दरवाजे के सामने एक व्यक्ति आया और जोर से बोलने लगा, मैं बादशाह अकबर हूं या मैं राजा शिवाजी हूं, तो हम क्या सोचेंगे उसके बारे में? पागल है। क्यों पागल है? अपनी पहचान नहीं है, वो अपने आप को कुछ और ही समझ रहा है। वो है कुछ और अपने आप को कुछ समझ रहा है। और तो उसी प्रकार से हमारा पागलपन क्या है? तो फिर अपना परिचय क्या है? कृष्ण के दास। लेकिन अब क्या सोच रहे हैं हम? शरीर, शारीरिक बुद्धि, देह बुद्धि। मैं एक मनुष्य हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, मैं अमीर हूं, गरीब हूं, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थ हूं, लंबा हूं, मैं मोटा हूं, पतला दुबला हूं, बीमार हूं। तो ये सब एक प्रकार का पागलपन है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम समझें कि चलो अब कोई ये नहीं है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे इस देह बुद्धि से, शारीरिक भावना से हमें निकलना है, और निकलने के बाद हम उस शुद्ध स्थिति में पहुंच जाएंगे कि हम सब श्री कृष्ण के दास हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। और आगे नारद मुनि क्या कहते हैं? साधन भक्ति का उदाहरण नारद मुनि श्रीमद् भागवत में क्या देते हैं बताइए, पढ़िए।
मनुष्य को किसी न किसी साधन के द्वारा अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करना होता है, यही कृष्ण भावना मत कहलाता है।
तो यहाँ
गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य के लिए ऐसे साधन ढूंढे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर कर सके, यही साधन भक्ति की शुरुआत है।
तो यहाँ देख रहे हैं नारद मुनि का कथन यहाँ पे है, तस्मात् केनापिपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत। इसका क्या मतलब है? तस्मात्, तस्मात् मतलब अतः, इसलिए या इस प्रकार या अतः। केनापि, केन अपि उपाय न, किसी न किसी उपाय से, किसी न किसी तरह से मन मन को कृष्णे कृष्ण में निवेशयेत, लगाना चाहिए। और एक जगह भी ये बताया जाता है, येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत, तो उसी प्रकार का भी ये श्लोक है, तो इसको भी आप याद करिएगा, क्योंकि ये साधन भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी न किसी प्रकार से हमें भगवान के ऊपर मन को रखना है। तो यहां जो केन और उपायेन, किसी न किसी तरह से या प्रकार से, इसका मतलब है कि भय, घृणा, द्वेष ऐसे भावनाओं के अलावा जो अनुकूल तरीकों से हमें कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कंस और शिशुपाल ने सोचा था, उस तरह से नहीं। चाहे स्नेह से, चाहे पारिवारिक बंधन के कारण जैसे पांडवों का था, चाहे वैधि भक्ति से, जो भी हो, ऐसे अनुकूल भावनाओं से किसी न किसी प्रकार से हमें भगवान के ऊपर मन केंद्रित करना चाहिए। और इसके लिए उदाहरण कौन सा है? चैतन्य महाप्रभु ने कैसे साधन भक्ति के लिए हमें मार्ग बतलाया है? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से क्या हो जाता है? मन कृष्ण निवेशये, तुरंत मन कृष्ण में जाता है, केंद्रित हो जाता है। और इसके लिए उदाहरण अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज ने क्या किया? नवधा भक्ति स्वीकार किया। भक्ति के नौ अंगों को आप जानते हैं ना सब? वेरी गुड। तो ये अम्बरीश महाराज ने अपने संपूर्ण इंद्रियों को इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाया। ये श्लोक को जानते हैं जिनका अनुवाद अभी पढ़ा देवकी नंदन प्रभु ने? सवै मनः कृष्ण पदारविंदम वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। कितने लोग सब पूरा श्लोक जानते हैं? दोनों श्लोक जानते हैं। तो इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि महाराज अम्बरीश का उदाहरण कि कैसे उन्होंने अपने समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। तो कैसे मन को कृष्ण के ऊपर केंद्रित करना है, ये महाराज अम्बरीश से हम सीख सकते हैं। सवई मन कृष्ण पदारविंद यो हो। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से श्री कृष्ण के ऊपर अपना मन केंद्रित करता है, वो शीघ्रातिशीघ्र कृष्ण भावना के पथ में आगे बढ़ेगा और अपने मूल कृष्ण प्रेम को पुनः प्राकट कराएगा। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु के आधार पर कि ये साधन भक्ति जो है इसके भी दो विभाग हैं। यहां है, देखिए, साधन भक्ति के दो कौन से हैं? वैधि भक्ति, रागानुग भक्ति। तो संक्षेप में कोई बताइए वैधि भक्ति क्या है और रागानुग भक्ति क्या है, संक्षेप में केवल।
वैधि भक्ति जो आचार्य के द्वारा जो विधि विधान बताए हैं उसके अनुसार भगवान की भक्ति करना, जिसमें रुचि नहीं होती है लेकिन ज्ञान के बाद वो नियम पालन करने के हिसाब से करता है।
बहुत अच्छा। तो इसमें गुण कौन से होते हैं? एक आचार्यों के या तो शास्त्रों के आदेशानुसार किया जाता है, ऐसे नहीं कि मन गढ़ित ढंग से किया जाता है। आचार्यों के या तो शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर वो आदेश के अनुसार भगवान की भक्ति करना, और दूसरा नहीं, हाँ, नियम पूर्वक। दूसरा और तीसरा क्या है? एक मैं अभी आपने बताया था महत्वपूर्ण पॉइंट है, यंत्रवत अर्थात क्या, रुचि उत्पन्न नहीं हुई है। हालांकि स्वाभाविक रूप से रुचि उत्पन्न नहीं हुई है उसकी भगवान की सेवा में, फिर भी एक कर्तव्य के तौर से वो करता है कि नहीं मेरे बुद्धि का प्रयोग करके मैं समझता हूं कि शास्त्रों का पालन करना मेरे लिए बहुत आवश्यक है, ये मेरे हित के लिए है। हालांकि सुबह मंगल आरती को उठना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं उठूंगा क्योंकि ये शास्त्रों का आदेश है, ये गुरु का आदेश है, मेरे लिए अच्छा है तो मैं करूंगा, रोज उठूंगा। मुझे 16 माला जप करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं करूंगा। मुझे टीवी के सामने बैठना अच्छा लगता है, परंतु फिर भी मैं नहीं बैठूंगा, है ना, हाँ? क्योंकि ये भी आदेश है, मेरे भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। रुचि है कहाँ, टीवी में, लेकिन बुद्धि से हम अपने इस कृत्रिम रुचि को हम दबा देते हैं। क्यों? शास्त्रों के आदेश, गुरु के आदेश अनुसार, और ऐसे नित्य नियम पालन करते हैं, ऐसा करके धीरे धीरे से हम प्रगति करते हैं। तो विधि के अनुसार करना, इसलिए उसका नाम है वैधि। और रागानुगम है क्या है, तो रुचि, तो रागानुग और वैधि में फर्क विशेष करके ये है कि रागानुग भक्ति में क्या होता है, रुचि है, रुचि होती है सेवा के लिए। अब व्यक्ति को बताना नहीं पड़ता उठो उठो मंगल आरती के लिए क्यों नहीं आते हो, क्यों नहीं जप करते हो, क्यों सोते हो जप के अंदर, जप में, जप के समय सोना नहीं चाहिए, अपना समय नष्ट नहीं करो, बताना नहीं पड़ता। स्वाभाविक रूप से भक्त जो है, क्योंकि उसके अंदर रुचि होती है, तो वो भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। केवल इसीलिए नहीं करता कि शास्त्रों में ऐसे कहा है इसलिए हमें करना चाहिए, गुरु ने हमें बतलाया इसलिए हमें करना चाहिए। हाँ, गुरु जो बताते हैं वो तो करते ही हैं, परंतु केवल इसलिए नहीं, अब उसे रुचि लग गई है, अब वो छोड़ नहीं सकता भक्ति को। हाँ, पथभ्रष्ट थोड़ा बहुत हो सकता है, जैसे भाव भक्ति में भी होता है, परंतु रुचि होने के कारण अब उसे भक्ति छोड़ना भी इतना आसान नहीं हो जाता है। लेकिन वैधी भक्ति के स्तर में भक्ति को छोड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। थोड़ी कोई परेशानी आ जाती है तो माला एक तरफ हो जाती है ना, और मंगल आरती दूसरी तरफ, प्रभुपाद की किताबें तीसरी तरफ, भक्त लोग चौथी तरफ। अब नहीं चाहिए भक्तों का संग। मैं मंदिर में गया, भक्त ने कुछ मुझे ऐसे बात कर लिया मेरे साथ में, मुझे बहुत बुरा लगा, नहीं जाना है भक्तों के संग में। जब तक कि वो भक्त मेरी क्षमा नहीं चाहेगा, मैं जप नहीं करूंगा। तो यह है शुरुआत, नौ सुखी अवस्था है। लेकिन जब रागानुगम में पहुंचते हैं तो व्यक्ति ऐसे आसानी से छोड़ता नहीं है, क्योंकि रुचि स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो गई होती है। तो जैसे वैधी भक्ति की अवस्था में भक्त अपने नियमों का पालन करता है, रागानुग की अवस्था में भी वो करता है, परंतु स्वाभाविक रूप से करता है। वैधी भक्ति में थोड़ी जबरदस्ती होती है। जबरदस्ती किस प्रकार की, आदेश, शास्त्रों के आदेश, गुरु का आदेश, दूसरे भक्तों का दबाव, क्यों नहीं आ रहे हो मंगल आरती में, चलो आओ आओ, कल से आना चाहिए, तो थोड़ा दबाव होता है, लोग क्या कहेंगे कि मैं मंगल आरती में नहीं आ रहा हूं, तो चलो जाना चाहिए। तो अन्यों के दबाव से कुछ हम करते हैं कभी कभी, लेकिन रागानुग में किसी के दबाव की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं ही उन्हीं नियमों का पालन करेंगे जो वैदिक भक्ति में करते थे, परंतु इस समय स्वेच्छा से, रुचि से, बड़े आनंद से करते हैं। कभी कभी वैदिक वैदिक भक्ति के समय भी भक्त को थोड़ी रुचि आ जाती है और किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ सही है, परंतु वो रुचि स्थिर नहीं होती है। आज है तो कल नहीं है, अब है तो आधे घंटे में नहीं होती है, कुछ घटना हो गई तो बस डावाडोल हो गए, संभावना होती है। और दूसरों को कहना इसका मतलब केवल ये नहीं है कि दूसरे लोग हमें बताएं, शास्त्रों के आदेश अनुसार भी शास्त्रों में बताए इसलिए मुझे करना चाहिए। भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में, भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसे कहा है कि हमें ऐसे करना चाहिए, इसलिए हम करेंगे क्योंकि हमारे भलाई के लिए है, ये भावना रहती है। तो ऐसा नहीं कि वैदिक भक्ति में बिल्कुल कोई रुचि नहीं होती, अवश्य, नहीं तो हम टिक कैसे पाते। आदेश का पालन करने के लिए भी थोड़ी बहुत तो रुचि चाहिए ना, ये तो कौन कर पाएगा। भक्ति करते करते थोड़ा आनंद तो मिलता ही है, थोड़ा रस मिलता है, और रस का स्वाद अच्छा लगता है भक्त को। लेकिन भक्त अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और जब वो रस थोड़े समय के लिए थोड़ा कड़वा हो जाता है, फिर भी वो भक्ति को छोड़ता नहीं है, ये लक्षण होते हैं। और जैसे वो स्थिर होते रहता है, फिर वो शनि शनि रागानुगा भक्ति की ओर पहुंच जाता है। इसलिए वैदिक भक्ति की परिभाषा प्रभुपाद जी ऐसे करते हैं। आइए पढ़िएगा 22वें पन्ने में रूप गोस्वामी वैदिक भक्ति की परिभाषा क्या करते हैं, बताइए। फिर से पढ़िए, आप सब लोग ध्यान से पढ़िए, अभी इसको सुनिए या पढ़िए। हाँ फिर से बोलिए।
रूप गोस्वामी ने भक्ति के प्रथम भाग अर्थात वैदिक भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है, जब भगवान के प्रति कोई अनुरक्ति या कोई रागानुगा भक्ति नहीं होती।
अनुरक्ति या रागानुगा भक्ति, अनुरक्ति मतलब एक आसक्ति भगवान के प्रति, रुचि। आगे बढ़िए।
और मनुष्य गुरु के आदेश पालन मात्र के लिए या शास्त्रों का पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो ऐसी अनैच्छिक सेवा वैदिक भक्ति कहलाती है।
अनैच्छिक सेवा मतलब क्या?
बिना इच्छा के।
इच्छा नहीं होते हुए भी, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी इच्छा नहीं होती है। ऐसा नहीं कि वैदिक भक्ति करने वाले को कभी स्वयं उठने की इच्छा नहीं होती, कि हर बार डांटना पड़ता है, ऐसे नहीं है। लेकिन ये इच्छा जो है इतना तीव्र नहीं होता है, कभी इच्छा होती है कभी नहीं होती है। और होती भी है तो जाता है, लेकिन भक्ति के हरेक अंग के बारे में नहीं होता। कर्तव्य बद्ध होता है वैदिक भक्त, नियमबद्ध होता है, ठीक है। और इसके लिए एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, रूप गोस्वामी भी, कि वैदिक भक्ति भक्ति के इन सिद्धांतों का वर्णन श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध में आता है। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। कोई पढ़िए कि इसका बैकग्राउंड क्या है, पढ़िए आगे अगला जो।
वैदिक भक्ति के इन नियमों का वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है, जहाँ शुकदेव गोस्वामी मरणा विमुख महाराज परीक्षित को उनके कर्मों के विषय में शिक्षा देते हैं। शुकदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित की भेंट अपनी मृत्यु से एक सप्ताह पूर्व हुई थी और राजा घबराया हुआ था कि मृत्यु होने के पूर्व क्या करना चाहिए। वहां पर अन्य अनेक मुनि भी आ गए, किंतु कोई भी उन्हें सही निर्देश ना दे सका।
हाँ, तो ये किस परिस्थिति में, जब परीक्षित महाराज अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे और अन्य जो मुनिगण वहां थे वो उनको ठीक ठाक कोई सही उपदेश नहीं दे सके, तो सुखदेव गोस्वामी वहां पहुंचे और उन्होंने आदेश दिया। और ये जो आदेश इस समय दिया, जो जिसका वर्णन यहाँ पे है, वो है वैधि भक्ति का वर्णन। तो आइए, क्या आदेश था जिसमें उन्होंने वैधि भक्ति का वर्णन किया, सुनते हैं।
हे राजन, यदि आप अगले सप्ताह निर्भीक होकर मृत्यु का सामना करना चाहते हैं, मृत्यु किसमें वास्तव में भयभीत रहते हैं, तो आपको चाहिए कि अविलंब ईश्वर का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण शुरू कर दें। यदि कोई हरे कृष्ण का कीर्तन और श्रवण करे तथा भगवान कृष्ण का सदैव स्मरण करे, तो वह किसी भी क्षण आने वाली मृत्यु से निडर रह सकेगा।
तो ये कौन सा श्लोक है, कोई बता सकते हैं? बुप्पे। हाँ बोलिए श्लोक। अच्छा तैयार है श्लोक अभी? अच्छा ऊपर लगाने दीजिए। आज प्रभु को क्लास अटेंड करने नहीं मिला, उस हमारे चार्ट में समय गया नहीं। अच्छा ये लगाएंगे ऊपर, हाँ इसके ऊपर लगा दीजिए। तस्मा नहीं तस्माद, ठीक है तस्माद है, द द आधा द, केवल द अक्षर भारत, कीर्ति नहीं कीर्तितव्यश्च, रस में दीर्घ मात्रा है कीर्ति 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 क दीर्घ मात्रा है द, तस्माद और यहां कीर्तितव्य क है ना, वो मात्रा लंबी है, बड़ी मात्रा है कीर्ति तव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम ने भयम, और नीचे चेच्छता भयम य यम लास्ट सेकंड लास्ट जो है, नहीं वो ठीक है लास्ट सेकंड लास्ट अक्षर जो है च च नहीं य है, भयम भयम च नहीं य भयम अभयम है वो वास्तव में, ठीक है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः चेच्छता भयम्। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः चेच्छता भयम्। बोलिए।
तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्।
बोलिए।
तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्।
माताजी कोई बोलेंगे?
तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोत कर्तव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्।
तस्मात् भारत सर्वात्मा। भारत कौन है? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज को भारत क्यों कहा गया है? भरत वंशी। सारे पांडवों को भी, अर्जुन को भी श्री कृष्ण भारत कहते हैं ना, तो अर्जुन भी भारत है, परीक्षित भी भारत है, भरत वंशी। तो इसीलिए तस्मात् अतः हे भरत वंशी महाराज परीक्षित, सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि ही, ये सब भगवान कृष्ण को संबोधित करने वाले शब्द हैं। सर्वात्मा का मतलब क्या है? आत्मा के भी आत्मा, आत्मा के भी आत्मा, मतलब यह परमात्मा समझिए। सब प्राणियों के हृदय में जो विराजमान है परमात्मा और भगवान षडैश्वर्य संपन्न भगवान श्री कृष्ण, ईश्वर भगवान भी परम नियंत्रण करता है, नियंता है, और हरि ही सबको आकर्षित करने वाले हरि। श्रोतव्य मतलब सुनना चाहिए, कीर्तितव्य मतलब बोलना चाहिए, स्मर्तव्य मतलब स्मरण करना चाहिए, इच्छतो इच्छा करता है, क्या इच्छा करता है? नहीं, आखिरी लाइन कौन सा, आखिरी शब्द कौन सा है? जो भय इच्छा करता है, हम लोग अभयम इच्छा। जो भी व्यक्ति मृत्यु के समय अभय होने की इच्छा करता है, निडर होने की इच्छा करता है, उसे क्या करना चाहिए? उसे सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। किनके बारे में? सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि कृष्ण के बारे में। क्योंकि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था कि जो व्यक्ति मृत्यु के द्वार पे खड़ा है उसका क्या कर्तव्य है, उसे किसके बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। तब सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य च। ये तीन चीजें आपको करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति इच्छता अभयम ऐसे अवस्था में जो निडर होना चाहता है, उनको ये तीन तीन चीजें करनी चाहिए। तो केवल कृष्ण के बारे में, और किसी का नाम नहीं लिया है सुखदेव गोस्वामी ने। इसलिए भगवान के लिए कितने शब्दों का उपयोग हुआ, यहां देखिए, सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, चारों शब्द केवल श्री कृष्ण को संबोधित करते हैं और किसी को नहीं। तो प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में कह रहे हैं यह किताब में कि देवताओं के बारे में कि सुखदेव गोस्वामी ऐसा आदेश नहीं दे रहे हैं कि किसी भी देवता का स्मरण कीजिए, उनके बारे में कीर्तन कीजिए, ऐसा नहीं कह रहे। प्रभुपाद कहते हैं एक अन्य जगह कि बंगाल में यह प्रथा है काली कीर्तन। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये विरोधाभास है, काली और कीर्तन ये कैसे हो सकता है? कीर्तन मतलब केवल कृष्ण कीर्तन, कीर्तन केवल कृष्ण का होना चाहिए, देवी देवताओं का जो कीर्तन नहीं कहलाता वो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब जो व्यक्ति मृत्यु को पार होना चाहता है, उसे केवल कृष्ण के बारे में सुनना, बोलना, स्मरण करना चाहिए। मायावादी लोग हैं वो कृष्ण और देवताओं में अंतर समझते नहीं है, कृष्ण को भी एक देवता ही समझते हैं, अन्यों की तरह सूर्य देव हो या ब्रह्म देव हो, उनकी तरह एक देवता समझते हैं। लेकिन श्री कृष्ण इन सब के उद्गम हैं, इन सब के स्वामी हैं, इसलिए कृष्ण के बारे में ही हमें सोचना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण कर सुनना चाहिए। और प्रभुपाद जी फिर आगे क्या कहते हैं, भगवद गीता में क्या कहते हैं पढ़िए। कौन से श्लोक का वर्णन है इसमें? भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, तो कौन से श्लोक में ऐसा कहते हैं? कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, हे कौन्तेय कुंती पुत्र, जाके सब जगह घोषणा करो कि मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होता है। तो भक्त कभी विनष्ट नहीं होता है, इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं यहां पे? क्या इसका मतलब है कि उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी? नहीं, यहां पढ़िए, विनष्ट होने का मतलब क्या कहते हैं प्रभुपाद जी यहां? हाँ, तो विनष्ट होने का मतलब है कि इस अनमोल मनुष्य देह को प्राप्त करने के बाद भी वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से अपने आप को छुटकारा नहीं दिला सकता है। लेकिन भक्त के लिए ऐसा नहीं है। भक्त अपने मनुष्य देह का पूरा लाभ उठाता है, अपने जीवन को सफल बनाता है और इसलिए मृत्यु के पार हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। और प्रभुपाद जी आगे बतला रहे हैं कि ऐसा जो विनष्ट होने वाला व्यक्ति, वो इस भवसागर में फेंक दिया जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि प्रकृति के नियमों के अनुसार वो कहां फेंका जा रहा है। 84 लाख योनियां हैं, इन योनियों के बीच में कभी इस योनि में कभी उस योनि में वो ऐसे घूमता फिरता रहता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं बड़े गंभीरता से, तो ऐसे कोई भय हमारे लिए नहीं रहेगा कि पुनः हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में चले जाएं। जो अच्छा भक्त रहता है, निश्चित ही वो कृष्ण के धाम में चले जाएगा, ऐसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया है। क्या वचन दिया है, कौन से श्लोक में वचन दिया है कि मेरा भक्त मेरे धाम में जाएगा, बताइए? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, वो तो है, लेकिन मेरा भक्त वहां जाएगा। मन मना पूरा बोलिए। प्रतिजाने प्रियोसी में भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण करो, मुझे नमस्कार करो, मेरा भक्त बनो। जो इस प्रकार की भक्ति करता है, भगवान आश्वासन देते हैं, निस्संदेह जान लो कि तुम मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। फिर आगे पद्म पुराण का प्रमाण रखते हैं रूप गोस्वामी। पद्म पुराण में क्या कहा गया है? हाँ,
उसमें कहा गया कि मनुष्य को चाहिए वह सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करे। ये ध्यान अर्थात विष्णु का निरंतर स्मरण कहलाता है। कहा गया है कि मन को विष्णु में स्थिर करके ध्यान करना चाहिए। पद्म पुराण की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को ध्यान द्वारा सदैव विष्णु के स्वरूप पर स्थिर रखे
और उसे क्षण भर भी ना भूले, चेतना की यह अवस्था समाधि कहलाती है।
पद्म पुराण में बताया गया है कि सदैव हमारा मन भगवान के ऊपर केंद्रित करना चाहिए ध्यान से, इसको ध्यान कहते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। तो ध्यान में स्थित होकर अपने हृदय में स्थित परमात्मा के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और आगे चल के प्रभुपाद फिर कहते हैं कि हमें हमारे जीवन को ऐसे बना लेना चाहिए कि सदैव हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सकें, चाहे वो विष्णु का चतुर्भुज रूप हो, चाहे वो श्री कृष्ण का द्विभुज रूप हो, लेकिन हमें सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए। और पद्म पुराण क्या कहता है इसके बारे में?
पद्म पुराण की संस्कृति है कि जैसे भी हो सदैव विष्णु का चिंतन करो, किसी भी परिस्थिति में उन्हें मत भूलो।
हाँ अच्छा, वो चार्ट लगाएंगे ऊपर फिर से। हाँ यही यही बस, और यही है वैधि भक्ति का सार। अभी हम वैधि भक्ति की चर्चा कर रहे हैं ना, ठीक है, धन्यवाद। स्मर्तव्यः सततं विष्णुर् विस्मर्तव्यो न जातु चेत् सर्वे विधि निषेधास्योर् एतयोरेव किंकराः। स्मर्तव्यः सततं विष्णुर् विस्मर्तव्यो न जातु चेत् सर्वे विधि निषेधास्युर् एतयोरेव किंकराः। सततम् विष्णुर् विस्मर्तव्यो न जातु चेत् सर्वे विधि निषेधास्युर् यो एव किंकराः। स्मर्तव्यः सततं विष्णुर् न जातु चेत्
सर्वे
विधि निषेधास्युर् एतयोरेव किंकराः। और कोई बोलिए, माताजी बोलिए। स्मर्तव्यः सततं विष्णुर् विस्मर्यो न जातु चेत् सर्वे विधि निषेधास्युर् एतयोरेव किंकराः। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? स्मर्तव्यः मतलब क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए सततम्, सदा। किनका?
विष्णु।
सदा विष्णु का स्मरण करो। दूसरा विस्मर्तव्य है, मतलब भूल जा रहे। विस्मर्तव्य मतलब कभी नहीं भूलना, कब नहीं भूलना। विस्मर्तव्य न जातु चित, भूल जाना। विस्मर्तव्य मतलब
भूल जाना।
न जातुचित कभी नहीं भूलना। स्मर्तव्य है सततम मतलब सदैव स्मरण करना, और विस्मर्तव्य न मतलब कभी नहीं भूलना। किनको नहीं भूलना? विष्णु या कृष्ण को, जातुचित कभी भी नहीं। क्यों नहीं भूलना चाहिए? सर्वे विधि निषेधाः स्युर् एतयोर् एव किंकराः। वैधि भक्ति में दो प्रकार के आदेश होते हैं, एक को विधि कहते हैं, एक को निषेध कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है ये गोली ले लो, सुबह ऐसे खाओ, दोपहर में ऐसे खाओ, रात को ऐसे खाओ, और साथ साथ थोड़े निषेध भी देता है कि ये मत खाना, वो मत खाना। उसी प्रकार से वैदिक भक्ति के पथ में भी विधियां हैं और निषेध भी हैं। हमारे लिए विधियां कौन सी हैं? कोई उदाहरण? मंगल आरती में उठना, अभी हम पढ़ रहे थे ना, 16 माला जप करना, सत्संग में आना, श्रीमद् भागवत श्रवण करना, तो ये सब विधि है। निषेध, चार नियमों का पालन करना, असत्संग को त्याग करना। तो ये सारे कितने सारे विधि निषेध हैं, अनेक हैं शास्त्रों में, ऐसे हजारों की संख्या में विधियां हैं और निषेध भी हैं। तो यहां इस श्लोक में, पद्म पुराण के श्लोक में कहा गया है कि जितने भी ये सारे विधि और निषेध हैं, ये सारे किंकर हैं। किंकर मतलब दास, सेवक। किस चीज के किंकर हैं? इन दो सिद्धांतों के किंकर हैं, इन दो नियमों के किंकर हैं। कौन से दो नियम? भगवान का सदैव स्मरण करना और भगवान को कभी नहीं भूलना। तो ये भी श्लोक आप याद कीजिए। तो अब याद करने के लिए कितने श्लोक हो गए? अन्याभिलाषिता शून्यम, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, फिर कृति साध्या भवेत साध्य भावा सा साधनाभिदा, साधन भक्ति की परिभाषा, फिर तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, अभी इसके पहले जो किया था, और पांचवा स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित, और साथ साथ तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत। ये तो एक ही लाइन है, ये ज्यादा कठिन नहीं है। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत, ठीक है। तो ये 5.5 श्लोक आपको याद करने हैं अभी तक, आगे चल के और थोड़े होंगे लेकिन इतने ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब यह है, सदैव कृष्ण का को स्मरण करो, कभी कृष्ण को भूलो नहीं। एक विधि है, दूसरा निषेध है। विधि कौन सा है? सतत कृष्ण का स्मरण करो, अर्थात ऐसे चीजों को करो जिनको करने से कृष्ण का स्मरण बढ़ेगा। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप, प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन, भागवत का श्रवण, श्री विग्रह का दर्शन आदि, इन चीजों को करते रहने से कृष्ण का स्मरण बढ़ेगा। अभी विस्मर्तव्यो न जातुचित, कभी भी कृष्ण को भूलना नहीं, अर्थात उन चीजों को नहीं करना जिनको करने से कृष्ण को भूल जाओगे, मतलब निषेध। कौन से हैं वो चीजें? असत्संग करोगे तो कृष्ण को भूल जाओगे, मदिरापान करोगे तो कृष्ण को भूल जाओगे। मतलब इसलिए वैदिक भक्ति का सार है कि हमें कृष्ण को सदैव स्मरण करना है और ऐसे कार्य करने हैं हमारे जीवन में जिनसे कि कृष्ण का स्मरण के लिए अवस्था अनुकूल हो जाए। उसी प्रकार से उन सब चीजों को हमें त्यागना है जिनसे कृष्ण को हम भूल सकें, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विधि है वैधि भक्ति की, ये दो चीजें हैं। और फिर रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये जो सिद्धांत है वैधि भक्ति का सिद्धांत, हमेशा कृष्ण का स्मरण करो, कभी कृष्ण को भूलो नहीं, ये समाज में सबके लिए है, ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मणों के लिए है, सबके लिए है। आश्रम और वर्ण, ये चार चार विभाग हैं, आप जानते हैं समाज में। चार आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। और चार वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो चाहे हम किसी भी आश्रम में क्यों न हो, चाहे हम किसी भी वर्ण के क्यों न हो, ये दो सिद्धांत हम सब के लिए है। समाज में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए है। अलग अलग वर्णों में, आश्रमों में हमारे विभिन्न विधि निषेध रहते हैं करने के लिए, परंतु इनको करते हुए ये दो अवश्य हमें करने चाहिए। बल्कि अगर हमने वर्णाश्रम धर्म का पूरा पूरा पालन किया, हमारे वर्ण आश्रम के विधि निषेधों का पूरा पालन किया, परंतु श्री कृष्ण का स्मरण नहीं हो पाया, श्री कृष्ण के भक्त नहीं बने, तो फिर उनका कोई लाभ नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी यहां बताते हैं, अतः पुंबिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम्। कि भगवान श्री कृष्ण को अपने वर्णाश्रम के कार्यों के द्वारा प्रसन्न करना ही जीवन की सफलता है। भगवान को प्रसन्न करने का आदेश हरेक व्यक्ति के लिए है, चाहे वो किसी भी वर्ण में क्यों न हो, किसी भी आश्रम में क्यों न हो। ये चार वर्ण किन्होंने बनाए हैं? मनुष्य ने बनाए हैं, भगवान ने। कौन से श्लोक में बताया गया है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम जन्म कर्म विभागशः। सही, देखिए, सॉरी हमारी भूल हो गई, जन्म कर्म नहीं गुण कर्म। ये तो समस्या है, लोग जन्म कर्म समझते हैं, लेकिन जन्म कर्म नहीं है, गुण कर्म है। अपने गुणों से और अपने कर्मों से विभाजन होता है। यह निश्चय किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, क्या है। तो भगवान ने जब ये विभाजन किया हुआ है, तो हर एक व्यक्ति के अलग अलग कर्तव्य भी बना लिए हैं भगवान ने, लेकिन वो सारे कर्तव्यों का उद्देश्य है कि वो इस अवस्था को प्राप्त करे। और अगर सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए भी वो यहां तक नहीं पहुंचे, तो उसका सारा जो कर्तव्य का पालन है, सारा परिश्रम है, वह केवल व्यर्थ है। कौन सा श्लोक है वो बता सकते हैं? श्रम एव केवलम, लेकिन कौन सा है? धर्म स्वनुष्ठित पुंसान विश्वक्सेन कथासु नोत्पादेतिम श्रम एव ही केवलम। अगर सारे वर्ण और आश्रमों का कर्तव्यों को पालन करने से भगवान श्री कृष्ण के प्रति रति या रुचि उत्पन्न नहीं होती है, तो ये सारा परिश्रम जो है केवल व्यर्थ है। श्रम एव ही केवलम। तो सभी का कर्तव्य है कि वो यहां करें, ऐसे नहीं कि केवल ब्राह्मणों को करना है, वैष्णवों को करना है, सभी का कर्तव्य होता है। और श्रीमद् भागवत का प्रमाण रख के श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये सारे वर्ण और आश्रम भगवान के विश्व रूप के अलग अलग शरीर के अवयवों से प्रकट होते हैं। जरा घुमाएंगे आप, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में चमस मुनि कहते हैं कि विश्व रूप, भगवान का जो विश्व रूप है, आप जानते हैं ना विश्व रूप क्या है? भगवान का विश्व रूप क्या है? विराट स्वरूप। तो ये एक काल्पनिक रूप है भगवान का, जिसमें हम कल्पना कर सकते हैं। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य सच्चिदानंद रूप को नहीं जानते हैं, तो उनके लिए ये काल्पनिक रूप है सारे भौतिक सृष्टि में, जिसमें हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड का मुंह ये है, बाहें ये हैं और पैर ये हैं, ये कमर है इत्यादि। तो ऐसे विश्व रूप के अलग अलग शरीर के अंगों से ये वर्णाश्रम उत्पन्न हुआ है। तो विश्व रूप के सिर से ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं, साथ साथ सन्यासी भी उत्पन्न होते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। उनके बाहों से उत्पन्न होते हैं क्षत्रिय और वानप्रस्थ, और उनके कमर से उत्पन्न होते हैं वैश्य और गृहस्थ, और विश्व रूप के पांवों से उत्पन्न होते हैं शूद्र एवं ब्रह्मचारी। ठीक है, चमस मुनि। हाँ, चमस मुनि। ठीक है, अलग अलग वर्णों के अलग अलग कार्य होते हैं, इसके बारे में प्रभुपाद संक्षिप्त में वर्णन करते हैं यहां पर। ये अगर आप सबने लिख लिया हो तो अगला पन्ना घुमाइए। सबने लिख लिया? ठीक है, हाँ, ये श्लोक आपको सुनाया था ना हमने, अभी आप में से कोई पढ़िए श्लोक को। बहुत अच्छा, हरि तोषणम, तोषण, तोष मतलब संतोष, संतुष्ट करना, हरि को प्रसन्न करना, संसिद्धि हमारे जीवन की परिपूर्णता है, जीवन की सफलता है, हरि तोषणम। तो कैसे? वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य, तो हमारे वर्ण और आश्रम के अनुसार जो धार्मिक कार्य हैं उनको करने से हमें भगवान को प्रसन्न करना है। अगर चाहें तो आप इस श्लोक को कंठस्थ कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो 5:30 रखिए कम से कम। ठीक है, लेकिन ये महत्वपूर्ण श्लोक है, विशेष करके प्रचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप लोगों को समझाने जाएंगे तो इस समय ये श्लोक आपको बहुत लाभदायक होगा, नहीं तो क्या होता है, लोग केवल इस बात में बैठे रहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं। ब्राह्मण कौन होता है, क्षत्रिय कौन होता है, इसका भी वर्णन प्रभुपाद जी यहां पर करते हैं। आगे वाले चार्ट में हम देखेंगे कि अलग अलग वर्णों के कर्तव्य क्या होते हैं। जब चारों वर्णों में ऐसे सहयोग की भावना होती है तो फिर सारा समाज संतुष्ट और संतुलित अवस्था में रह सकता है। परंतु जब हरेक व्यक्ति अपने अपने वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों को नहीं निभाता है और केवल जन्म के आधार पर अपने को ब्राह्मण या क्षत्रिय आदि कहलाता है, तो फिर उसका पतन हो जाएगा और वो उसका कोई वर्ण नहीं होगा। हालांकि वो अपने आप को ब्राह्मण कहला रहा है, परंतु वो ब्राह्मण है नहीं, गुण से, कार्यों से और गुण से वो ब्राह्मण नहीं है, इसलिए केवल नाम से ब्राह्मण मात्र है वो, इसलिए उसका पतन हो चुका है, हमें समझना चाहिए। उसका कोई वर्ण नहीं है। और कलयुग में वास्तव में यह परिस्थिति सभी की है। इसलिए क्या बताया हुआ है, कलो शूद्र संभव, कलयुग में सभी शूद्र हैं, वास्तव में शूद्र से भी निम्न श्रेणी के हैं। वास्तव में अगर लक्षण देखेंगे लोगों के तो शूद्र भी होना बहुत बड़ी बात है। आजकल प्रामाणिक तौर से शूद्र होना ये ठीक नहीं, क्योंकि आजकल जो जो मालिक होते हैं वो भी ठीक से अपने सेवकों का देखभाल करना नहीं जानते, तो सेवक लोग भी बड़े ट्रेड यूनियन वगैरह बना के फिर सब उपद्रव मचाते हैं। तो कोई आजकल अपने अपने कर्तव्यों को नहीं निभा रहा है, इसलिए सारे समाज में इतना उत्पात हो गया है। तो आइए घुमाइएगा जरा। चार वर्णों के कार्य, ब्राह्मणों के कार्य रूपा जी कह रहे हैं, प्रचार करना, भोजन ग्रहण करना। सभी लोग ब्राह्मण होना चाहते हैं ना, बहुत अच्छा कर्तव्य है, भोजन ग्रहण करने को मिल जाता है। क्यों भोजन करना, ये क्यों ब्राह्मण का कर्तव्य है? क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं भगवान विष्णु के मुख माने जाते हैं, तो विष्णु ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन स्वीकार करते हैं और अग्नि के माध्यम से भी। जब अग्नि में आहुतियां आप डालते हैं यज्ञ के समय, तो वो भी विष्णु का मुख कहलाता है। अग्नि विष्णु की जिह्वा के समान होती है, तो मुख में आहुति डालते हैं तो ग्रहण करते हैं भगवान। तो भोजन ग्रहण करना केवल इसको इससे आकर्षित होकर सभी कहे मैं ब्राह्मण हूं, ये ठीक नहीं। साथ साथ और एक भी काम करना है, नहीं तो ब्राह्मण नहीं कहलाता। अगर केवल भोजन ग्रहण करने के लिए ब्राह्मण हूं कहेगा तो फिर उसका पतन हो जाएगा। क्या है पहला लक्षण? प्रचार करना चाहिए। किस बात का? कृष्ण भावनामृत का। ऐसे हमने सुना है कि ब्राह्मणों के बीच में कभी कभी, खास करके इस भाग में, जो सही ब्राह्मण होते हैं जाति के ब्राह्मण भी, अगर वो कहीं भोजन यजमान के घर भोजन लेने जाते हैं और अगर वो खड़े होकर निकलते हैं उस घर से, तो उनको अपमानित होते हैं। पता है क्यों? अगर कोई अपने यजमान के यहां जाता है और चलते चलते उस घर के बाहर निकलता है, हाँ, उठा के ले जाना पड़ेगा उसे। इतना भोजन ग्रहण करना चाहिए कि खटिया लाकर उसको खटिए के ऊपर ले जाना पड़ेगा, तब वो ब्राह्मण है कहलाता है। हाँ हाँ, और बहुत सारा घी एक साथ पी जाते हैं, घी के लोटे लोट, बिल्कुल ग्लास के ऊपर ग्लास पी जाते हैं घी के। हम लोग चार पांच बूंद लगाते हैं, अरे बस 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 के कहना शुरू कर देते हैं, ये लोग ग्लास के ग्लास पी जाते हैं घी के भी। लेकिन आजकल ये क्या है, जब कोई प्रामाणिकता से ब्राह्मण नहीं है तो केवल ब्राह्मण के का ये कार्य है खाना भोजन, इसमें कुछ फायदा नहीं होगा जब तक कि उसके अंदर वो प्रचार की भावना नहीं है। और प्रचार तब आएगा जब आचार होगा, आचार तब आएगा जब विचार होगा। सही विचार होने चाहिए पहले। ब्राह्मण के गुण क्या होने चाहिए? भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं, श्लोक बोलिएगा, शमो दमः तपः शौचम क्षांतिर आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो नौ गुणों का वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण ने। तो जिनके पास ये नौ गुण होते हैं वास्तव में वही ब्राह्मण होता है, अन्यथा नहीं। और ऐसा व्यक्ति फिर भोजन ग्रहण कर सकता है विष्णु का प्रतिनिधित्व करते हुए। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति केवल एक रुपए का या 50 पैसे का उपवीत धारण करके कहे मैं ब्राह्मण हूं और फिर सब जगह जाए भोजन ग्रहण करने के लिए, ऐसा नहीं है। दूसरे हैं क्षत्रिय, प्रजा की रक्षा करना। किन से रक्षा करना चाहिए? शेर से, शत्रु से, माया से, यहां प्रभुपाद जी कहते हैं। हाँ, सेना रख के शत्रुओं से भी रक्षा करना चाहिए, ये तो है ही कर्तव्य, परंतु साथ साथ राजा का कर्तव्य भी होता है कि प्रजा को धर्म के मार्ग में ले जाए और प्रजा को माया के चंगुल से बचाए, माया में पड़ने से उनकी रक्षा करें। और तीसरे हैं वैश्य। वैश्य के बारे में क्या कहा गया बताइए, श्लोक क्या है? कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। हालांकि प्रभुपाद जी ने यहां गोरक्षा की इस अध्याय में वर्णन नहीं किया है, परंतु कर्तव्य है इसलिए हम लिख रहे हैं। अन्नोत्पादन, अन्न का व्यापार, अन्न का वितरण करना और साथ साथ गोरक्षा करना। फिर शूद्रों का कार्य क्या होता है? तीनों वर्णों की सेवा करना, परिचर्यात्मकम वैश्य शूद्र कर्म स्वभावजम। शारीरिक श्रम करना। तो इस प्रकार से चारों वर्णों को ऐसे सहयोग की भावना से कार्य करना चाहिए और सभी को भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, साथ साथ भगवान की कथाओं में रुचि जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। सभी को नित्य नियम से भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो जो वैदिक भक्ति का सिद्धांत था, स्मर्तव्य श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्, ये सभी को करना चाहिए, चाहे वो इन चारों ही वर्णों के क्यों न हो। और जब ऐसा नहीं होता है तो ये दुनिया नरक के समान बन जाता है, और अगर ऐसा होगा तो ये भौतिक जगत, ये पृथ्वी लोक भी साक्षात वैकुंठ हो जाएगा, ऐसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। बहुत सुंदर बात है। प्रभुपाद जी शोक करते हैं कि कभी लोग यहां राम राज्य की बात करते हैं लेकिन उनको राम के बिना राम राज्य चाहिए, कैसे संभव है? भगवान के बिना वैकुंठ कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर सारे वर्णों को, सारे आश्रमों को अपने अपने निहित कर्तव्यों को करते हुए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। और आगे चल के श्री कृष्ण उद्धव गीता में उद्धव से क्या कहते हैं जरा पढ़िएगा।
वे कहते हैं, हे उद्धव, सारे ही व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। ये कार्य चाहे शास्त्रानुमोदित हो या सामान्य सांसारिक कार्य हो, यदि वे इनमें से किसी भी कार्य के फलस्वरूप कृष्ण भावना भावित होकर मेरी पूजा करते हैं तो वह स्वतः इस जगत में और परलोक में भी सुख पूर्वक रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य क्यों न कर रहा हो, अगर वो मुझे कर्मों के फल को अर्पण करते हुए अपना जीवन जिए तो अपना जीवन सफल बनाएगा। चाहे वो अर्चना पद्धति के मार्ग से हो, चाहे वो वैदिक भक्ति के अन्य अंगों के माध्यम से हो, तो भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने से हम बहुत ही शीघ्र जीवन को सफल बना पाएंगे। इसलिए इस कृष्ण भावना के भावनामृत के आंदोलन में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, किसी को अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों क्यों नहीं है?
क्योंकि इन सबसे आगे है,
क्योंकि सभी लोग वैष्णव हैं, और वैष्णव होने से फिर कोई मायने नहीं रखता ये ब्राह्मण क्या है, क्षत्रिय क्या है, वैश्य क्या है, शूद्र क्या है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, कौन सा है वो श्लोक? नाहम शुरू सही है, नाहम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी न च नरपति वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंदम पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। ये श्लोक महत्वपूर्ण है जिसमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, मैं तो न ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, मैं न सन्यासी हूं, न मैं वानप्रस्थ हूं, गृहस्थ हूं, न ब्रह्मचारी हूं, मैं कौन हूं फिर, मेरा सच्चा परिचय क्या है? गोपी भर्तु हो, गोपी मतलब, गोपी भर्तु मतलब क्या है? कृष्ण। भर्तु शब्द का अर्थ क्या है? पालन करने वाले। तो गोपियों के पालन करने वाले कृष्ण हैं। तो गोपी भर्तु अर्थात कृष्ण के, गोपी भर्तु दासानु दासानु दास है, तो कृष्ण के दासानु दासों के दासों के दास। चैतन्य महाप्रभु अपना परिचय ऐसा देते हैं, तो हमें भी ऐसे ही बनना है। हम डायरेक्ट भगवान के दास नहीं बन सकते, हम भगवान के दासों के दासों के दास बन सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे ऊंची बात है, सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। आध्यात्मिक जगत में दासत्व का प्राधान्य है और भौतिक जगत में झूठे प्रभुत्व का प्राधान्य है। वहां चैतन्य महाप्रभु दासानुदास की बात कर रहे हैं और भौतिक जगत में सभी लोग बॉसानु बॉस की बात कर रहे हैं, है ना? कोई दास नहीं बनना चाहता, सभी बॉस बनना चाहते हैं, सभी प्रभु होना चाहते हैं। दास कहेंगे तो कोई मानते नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वास्तव में हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है ये। इस भावना को हम बनाए रखेंगे तो अवश्य सारा समाज बहुत सुखी होगा। और आगे अंत में नारद पंचरात्र से एक बात कह रहे हैं रूप गोस्वामी, क्या बात है जरा बताइए।
शास्त्रों द्वारा स्वीकृत कोई कार्य जो भगवान भगवान की तुष्टि के उद्देश्य से किया जाता है, संत गुरुओं द्वारा भक्ति का विधान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में नियमित रूप से भगवान की ऐसी सेवा करता है तो वह धीरे धीरे भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति के पद को प्राप्त होता है।
तो यहाँ दोबारा वैधी भक्ति की परिभाषा दी गई है, दूसरी परिभाषा है। वैसे पहली परिभाषा से भी ये समान ही है, परंतु ये नारद पंचरात्र से है। सुरर्षे विहिता शास्त्रे हरिम उद्दिश्य या क्रिया, हरिम उद्दिश्य या क्रिया मतलब जो क्रिया हरि को या कृष्ण को उद्देश्य बनाकर किया जाता है स एव भक्ति है, ऐसे क्रियाओं को वैधी भक्ति कहते हैं। और ऐसे वैधी भक्ति जो हैं वो गुरु और शास्त्रों के आदेशानुसार होने चाहिए हरि को प्रसन्न करने के लिए। इति प्रोक्ता तया भक्ति ही परा भवेत, और ऐसे धीरे धीरे से इसको करने से व्यक्ति शुद्ध कृष्ण प्रेम के स्तर को प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब अब के रूप गोस्वामी ने साबित किया है कि वैधी भक्ति से बहुत सारे फल प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन वैधी भक्ति करने से सबसे ऊंचा फल, श्रेष्ठ फल कौन सा है? प्रेमा भक्ति। और यही हमारे जीवन का सबसे ऊंचा उद्देश्य है, इसको प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है और पूरी चेष्टा हमारी बड़े गंभीरता से इस दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न? तो अभी हमने दूसरा अध्याय समाप्त किया और अगले बार से तीसरा अध्याय हम शुरू कर लेंगे। ठीक है, आध्यात्मिक जगत में दासत्व का प्राधान्य है और भौतिक जगत में झूठे प्रभुत्व का प्राधान्य है। झूठे प्रभुत्व, हम प्रभु नहीं हैं, हालांकि एक दूसरे को हम प्रभु कहते हैं, वो क्यों हम मानते हैं कि दूसरे हमारे प्रभु हैं, लेकिन हमें अपने आप को प्रभु कभी मानना नहीं चाहिए। हमें अपने आप को कभी हर समय दास मानना चाहिए।
झूठे प्रभुत्व का
प्राधान्य है, हाँ,
प्रभु का क्या है, मालिक?
प्रभुत्व, हाँ, मालिक होना, बॉसानु बॉस वही, हाँ बताइए। जब भक्तों का संग नहीं मिले तब तो जितना हो सके हमें संग भगवान के नाम से, भगवान के ग्रंथों से, भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के आदेश से वो संग हमको प्राप्त करना चाहिए। जहां भक्तों की वपुह संगति, वपुह संग मिल सकता है, अर्थात प्रत्यक्ष उनका सानिध्य मिल सकता है, तो बहुत ही अच्छा है। और जहां ये संभव नहीं है तो वाणी रूप में उनका संग हम कर सकते हैं। और जितना हो सके इसका लाभ उठाकर हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। जहां तक हो सके हमें ऐसे वातावरण में रहने का प्रयास करना चाहिए जहां के भक्तों का संग उपलब्ध हो, यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और जहां ऐसे संग उपलब्ध नहीं है तो भगवान के ऊपर निर्भर रह के भक्तों का संग इन माध्यमों के द्वारा, जैसे हमने वर्णन किया है, करके हमें संतुष्ट रहना चाहिए। अगर हो सकता है तो ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसके द्वारा हम भक्तों के संग को प्राप्त कर सकें। अगर संभव नहीं है तो बस संतुष्ट होकर अपना जप, कीर्तन, अध्ययन आदि, प्रचार आदि चालू रखना चाहिए। और उस जगह में हम प्रचार कर सकते हैं, प्रचार करके हम भक्त बना सकते हैं, भक्त बना के फिर भक्तों का संग में मिल जाएगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है। संग नहीं है तो संग बनाइए, लोगों को भक्त बनाइए, और भक्तों को बनाकर फिर आपको संग मिल जाएगा।
हाँ, अभी जब तो तीन भक्तियों से भी एक भक्ति के पहले पॉइंट को भी किया है कवर, तो अभी क्या इसके बाकी के पॉइंट्स, जागरण, भक्ति और ये सब के आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे क्या?
आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे। रूप गोस्वामी पाद ने रागानुग भक्ति और फिर प्रेमा भक्ति, भाव भक्ति, इनके बारे में संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है, विशेष करके इन पहले 19 अध्यायों में जो कि भक्ति शास्त्री के लिए अब है। बहुत अधिक विस्तार में वैधी भक्ति का वर्णन है, तो कई अध्याय हैं वैधी भक्ति के बारे में। कितने आपको याद होगा कि पहले कौन से, दूसरे अध्याय से लेकर 16वें अध्याय तक ये है साधन भक्ति का वर्णन, और दूसरे से 14 में वैधी भक्ति है, और केवल 15 और 16वां अध्याय जो है ये रागानुग भक्ति है, और फिर भाव भक्ति के लिए एक अध्याय और प्रेम भक्ति के लिए एक अध्याय। तो वैधी भक्ति के लिए 14 अध्याय हैं, और उसके पहले सामान्य भक्ति। रागानुग भक्ति के बारे में जो गलत धारणाएं हैं उनकी चर्चा हम उस समय करेंगे जब हम 15वें अध्याय में पहुंच जाएंगे। जब हम रागानुग भक्ति की चर्चा करेंगे उस समय यह विषय आएगा। रागात्मिका क्या है, रागानुग क्या है, रागात्मिक और रागानुग भक्ति के बीच में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, साथ साथ कृत्रिम रूप से रागानुग अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना, इसके धोखे क्या होते हैं, ये सब आगे चर्चा करेंगे। ठीक है,
तो जी पढ़ने से ऐसा लगता है, जैसे हम भगवद्गीता पढ़ते हैं उसमें प्रभुपाद जो रेफरेंस करते हैं पूरा श्लोक देते हैं किसी प्रकार का, उस तरह भागवतम पढ़ते तो भगवद्गीता का श्लोक नहीं देखा नंबर देते हैं गुरु, और यहाँ भक्ति रसम सिंधु पढ़ते भागवतम का श्लोक नहीं देखा भगवद्गीता भागवतम, ऐसा ऐसा लगता है कि भागवतम के बाद पढ़ने पढ़ने भागवतम पढ़ लेने के बाद पढ़ने का ग्रंथ है,
ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए केवल पहले 19 अध्याय दिए गए हैं, इसलिए हमने जहां भी ज्यादा करके जहां प्रभुपाद जी ऐसे भागवत या गीता का उल्लेख करते हैं तो हमने श्लोक लिखे हैं बोर्ड के ऊपर, ताकि आप उन श्लोकों को अनुवाद तो पढ़ ही रहे हैं किताब में, साथ साथ सामने आप श्लोक भी देखेंगे तो फिर अनुवाद अच्छी तरह से और समझ पाएंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न?
हमारे कोर्स के लिए 19 अध्याय ही होंगे
क्या? 19 अध्याय केवल भक्ति शास्त्री के लिए, और अभी केवल हम 2 अध्याय कर चुके हैं, आमुख भूमिका और पहले 2 अध्याय, क्योंकि पहले 5 अध्याय विशेष करके बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनके लिए हम ज्यादा समय दे रहे हैं। आगे जैसे चलेंगे 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे अध्याय हम जल्दी जल्दी कर लेंगे उनको, यहां जो प्राथमिक सिद्धांत हैं ये सब इन अध्यायों में हैं, इसलिए इनको समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, हाँ जी, वो प्रेमा भक्ति की चर्चा जब करेंगे उस समय शुद्ध नाम की चर्चा करेंगे। वैधी भक्ति में वैसे नाम अपराध से व्यक्ति उठने का प्रयास करता है और धीरे धीरे से उठ के फिर नामाभास की अवस्था में आता है। नामाभास में अपराध नहीं होते हैं, अपराध शून्य अवस्था होती है, परंतु अभी तक पूरी तरह से शुद्ध नाम नहीं आता है, तो अजामिल के जप को नामाभास कहते हैं, अपराध शून्य था। फिर आगे चल के जब अपराध शून्य अवस्था में भी हम पूरे प्रेम से भगवान का नाम पुकारते हैं, उस समय उसको शुद्ध नाम कहते हैं हृदय से, तो वो केवल प्रेमा भक्ति की अवस्था में प्राप्त होती है शुद्ध नाम। जितने ज्यादा हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना ही शुद्ध हमारा नाम होगा, हम जो नाम जप करते हैं वो उतना शुद्ध होगा, और जितना हम शुद्ध नाम जप करेंगे उतनी ज्यादा हम भक्ति में प्रगति करेंगे, तो एक दूसरे को वो पोषण करती है। नहीं, ऐसे नहीं है। हाँ, ध्यान पूर्वक जप नहीं करना ये सारे 10 अपराधों की जननी है। तो अगर हम जप कर रहे हैं और उस समय हम सोच रहे हैं कि कल किसके साथ क्या बातचीत हुई, किसके साथ क्या हुआ, तो फिर ये नाम से हट जाता है हमारा मन, तो ये एक अपराध हो जाता है। परंतु अगर हमारे नाम में रुचि बढ़ाने के लिए बीच बीच में हम अगर भगवान के सुंदर श्री विग्रह का स्मरण करते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। हालांकि श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि नाम लेना ये श्रवण का पथ है, लीला स्मरण का नहीं है। लीला स्मरण होगी तो वो स्वाभाविक रूप से आ जाएगी, लेकिन हमारी पद्धति है नाम को ध्यान से सुनना जब जप करते हैं, तो इसके बजाय कि हम भगवान के रूप को देखें या और कुछ करें, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम नाम को ठीक से सुने और साथ साथ अगर एक बार करे भी तो कोई दोष नहीं, परंतु मुख्य पद्धति ये है, सुनना है। हाँ, मन तो कभी सोचना बंद नहीं करता, मन इधर उधर जाता है, इसलिए मन को पुनः खींच के लाना पड़ता है, नाम के ऊपर केंद्रित करना पड़ेगा। जब हम जप करते हैं तो मन इधर जाता है उधर जाता है, परंतु मन को खींच के नाम के ऊपर केंद्रित करना चाहिए।
उस समय से केवल नाम सुन रहे हैं तो सर जो भी कुछ सोचेंगे भगवान जो
वो पूरा मन जो है श्रवण करने में मग्न हो जाना चाहिए। हरे कृष्ण
कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो जितना ध्यान से ध्यान लगाकर नाम का श्रवण करेंगे उतना ही ज्यादा लाभ हमको होगा। आखिर हम सुनते हैं कान से नहीं, किससे सुनते हैं? मन से सुनते हैं। मन कान क्या है? केवल सर में थोड़े छिद्र है ना, दो साधन है। ध्वनि कानों के माध्यम से अंदर प्रवेश करती है, फिर मन में ये निर्णय होता है कि अच्छी ध्वनि है नहीं है, ये संगीत अच्छा है नहीं है, बेसुरा है सुरीला है क्या है, ये निर्णय कहाँ होता है? कान में नहीं होता, मन में होता है। तो श्रवण जो होता है वो मन से होता है, इसलिए मन को नाम के ऊपर केंद्रित करना आवश्यक है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। गौर प्रेमानंदे। तो कल सुबह, कल दोपहर 3:30 बजे मिलेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा।